देवाय
देवकीनन्दनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम एक श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, आप पीछे बुला दोहराइएगा। ये श्लोक प्रथम नवे स्कंद के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है। भुवो भारवताराय भगवान भूत भावना अवतीर्णो निज अंशेन पुण्य श्रवण कीर्तन। भुवो भारवताराय भगवान भूत भावना अवतीर्णो निज अंशेन पुण्य श्रवण कीर्तन। भुवनो भारवताराय भगवान भूत भावना अवतीर्णो निज अंशेन पुण्य श्रवण कीर्तन। भुवो जगत का भार अवतार आए भार कम करने के लिए भगवान भगवान भूत भावना सारे जीवों के नित्य हितैषी अवतीर्ण अवतरित हुए हैं निज अंशेन अपने अंश स्वरूप समस्त साज सामान सहित सहित पुण्य श्रवण कीर्तन उनकी पूजा श्रवण तथा कीर्तन से की जाती है जिससे मनुष्य पवित्र हो जाता है। बोलिए, जो कोई उनके विषय में श्रवण और उनका कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है, चूंकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं। अतएव वे अपने सारे साज सामान सहित सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पर वर्णन है, जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण और उनका कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा है, अब श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, चूंकि समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं। भगवान कौन है? समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं। अतएव वे अपने सारे साज सामान सहित सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो भगवान जब भी आते हैं संसार में, समस्त जीवों के सतत हितैषी हैं भगवान, और सारे साज सामान सहित मतलब अपने सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल लेकर के भगवान आते हैं, ताकि क्या हो, शुद्ध करें लोगों को और इसका भार कम करें जो कि पाप का भार बढ़ रहा है। तो शुद्ध करने की क्रिया बताइए, भगवान के बारे में कहा गया व्यक्ति को सबसे बड़ा पुण्य जो है वो दर्शन करना नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया भुवो, भुवो मतलब पूरे जगत का भार, अवतार मतलब भार को कम करने के लिए भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं, अवतीर्ण निज अंशेन, भगवान अपने ही अंश रूप में इस संसार में प्रकट होते हैं, पुण्य श्रवणम कीर्तन, और उनकी पूजा करने का तरीका क्या है, उनके बारे में श्रवण करना और उनके बारे में। तो हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे धाम में तो उसका फल उतना नहीं है जितना फल है पुण्यम श्रवण कीर्तन। सबसे बड़ा पुण्य है ये जो अभी हमारा अगला 15-20 मिनट आधा घंटे जो निकलेगा इस समय को ही बताया गया भगवान ने, ये करने से क्या होता है, मेरी पूजा की जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने अगर हमें भगवान का एक बीज दिया है भक्ति रूपी, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन है भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। अगर भक्ति का ये बीज हमें प्राप्त हुआ है गुरु कृपा से, बीज को आरोपित करने के लिए एक मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी क्या होती है, तो ग्रीक भाषा में एक शब्द आता है जिसे कहते हैं ह्यूमस। मिट्टी को अगर ग्रीक में देखें तो बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है, ह्यूमस शब्द से आया है ह्यूमिलिटी। अगर नॉर्मल किसी पेड़ पौधे का बीज लगाना है तो मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन अगर भक्ति रूपी बीज को आरोपित करना है तो कौन सी मिट्टी चाहिए, ह्यूमिलिटी। विनम्रता नहीं होगी तो उस व्यक्ति की कभी भी भक्ति, चाहे वो कितना ही सुंदर दिखे, कितना सुंदर तिलक लगाए, कितना सुंदर वो आवरण पहने, लेकिन वो कभी भी भगवान का भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, विनम्रता। तो विनम्रता का क्या अर्थ है, व्यक्ति पूछता है, विनम्रता मतलब हाथ जोड़ करके किसी के सामने खड़े हो जाना। विनम्रता का अर्थ हम मार पिटाई करने से बचना, किसी को लंबा सा दंडवत देना, आज्ञा का पालन करना, विनम्रता क्या है? तो शास्त्र वर्णन करते हैं, विनम्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार करना, जो है ना, ये विनम्रता। हमसे कोई गलती हो जाए और व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले तो यही उसकी विनम्रता है। वरना ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, उन्हें पता होता है, बस ईगो के कारण वो स्वीकार नहीं करते, और जो स्वीकार नहीं कर पा रहा व्यक्ति अभी विनम्र नहीं कहला सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देना कीर्तनयम सदा हरि। तो उसमें सबसे पहले बोला तृणाद अपि शूनिचेना, व्यक्ति को तृण से भी अधिक अपने को नीचा मानना चाहिए, तृणाद अपि शूनिचेना, तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक सहनशील। पेड़ को पत्थर मारो फल देता है, पेड़ के ऊपर कोई व्यक्ति यूरिन कर देता है तो भी पेड़ को कुछ नहीं कहता। मतलब इस हद तक अगर हम आ सकते हैं कि कोई मेरे को कुछ भी व्यवहार करे, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अमानी ना मान देना, मैं उसको अपमान करने पर भी मान दे सकूं, अगर ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति क्या है, कीर्तनियम सदारी, वो सदा भजन कर पाएगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सदा भगवान का भजन करता है श्रवण कीर्तन, उस व्यक्ति में ये तीन गुण अर्जित होते हैं। पहला, वो क्या बन जाएगा, विनम्र इतना हो जाएगा कि उसको पैरों से दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, तब भी तिनके की तरह, घास की तरह दबेगा और बाद में सहनशील होकर के वो बहना कभी उठेगा ये नहीं कहेगा मैं आपके कांटे की तरह चुभूंगा जूते में, बिल्कुल तृणादपि शुनिचिन एकदम विनम्रता का व्यवहार करेगा और पेड़ के समान सहिष्णु हो जाएगा। दूसरा गुण सहनशीलता आ जाएगा। पहला उसके अंदर है कि एक होती है टॉलरेंस और एक होता है पेशेंस, ये दो अलग शब्द हैं। पेशेंस होता है, टॉलरेंस होता है कि किसी ने मुझे घूसा मारा और मैंने टॉलरेट कर लिया उस दर्द को, लेकिन उसके बाद मेरे मन में वो चलता रहा। एक घूसा मारा मैंने सहन कर लिया, दो घूसा मारा मैंने सहन कर, टॉलरेंस बढ़ रही है, लेकिन कुछ समय बाद टॉलरेंस समाप्त हो जाती है। उसके बाद कार्य करती है पेशेंस, मैं उन्हीं लगातार उसी गुस्से को उसी दर्द को पुनः पुनः कितनी बार सहन कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इज टॉलरेंस, देन इज पेशेंस। तो एजोनियस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं गुरु महाराज, कि जो व्यक्ति टॉलरेंस और पेशेंस का प्राइस पे करता है वो व्यक्ति भक्ति को खरीद सकता है। किसी चीज़ को खरीदने जाएंगे बाजार में तो दो चीज़ों की आवश्यकता है, दान मतलब कुछ हम रेट पता करेंगे, प्राइस देना पड़ेगा। तो महाराज का कोटेशन है, महाराज क्या कहते हैं, पे द प्राइस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, विनम्रता और सहनशीलता का अगर आप प्राइस पे करोगे यू कैन परचेज भक्ति महारानी। लेकिन हम देखा जाता है हम उन्हीं जगह विफल हो जाते हैं जहाँ टॉलरेंस की आवश्यकता होती है। जैसे कोई सीट नहीं दे रहा, ट्रेन लेट हो रही है, तो हमारा क्या जाता है, टॉलरेंस जाता है, पेशेंस जाता है। विपरीत परिस्थिति में विनम्रता का व्यवहार ही भक्त की लक्षण है। साधारण स्थिति में धोती कुर्ता डाल के तिलक लगा के मंदिर में दंडवत सभी कर सकते हैं, पापी भी कर सकता है। भक्त के लिए है जब सब अगेंस्ट हो, परिस्थितियां विपरीत हो, ऐसी जगह सबको विनम्रतापूर्वक नमस्कार कर सके, सहनशील हो सके, चुप रह सके, शांत भाव बनाए रखे, तो ये भक्त का गुण है। पर यह आएगा कैसे, पुण्यम श्रवण कीर्तन, जितना अधिक हम श्रवण कीर्तन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बीज आरोपित किया ह्यूमिलिटी की मिट्टी में तो क्या बीज बढ़ता रहेगा, उसको बीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। सींचेंगे कैसे, हाँ पुण्य श्रवणम कीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवणम कीर्तनम कर जल सिंचन, जितना ज्यादा व्यक्ति श्रवण कीर्तन करेगा उतना उतना बीज भक्ति का बढ़ेगा। और जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि नहीं है, कि भागवत नहीं पढ़ी, जो भी हम बात कर रहे थे, शेड्यूल नहीं है जिसका, कि चलो यात्रा में है, टाइम नहीं है, रीडिंग हो गई नहीं हुई नहीं हुई, कल देखेंगे परसों देखेंगे, श्रवण कीर्तन जितना कच्चा होता जाएगा उतना उतना बीज सूख जाएगा। अगर आपका बीज सूख गया तो क्या पेड़ निकलेगा उसमें से, मिट्टी के अंदर कई बार देखते हैं बीज लगाया लेकिन वो बीज पुनः नहीं जागृत हो पाया, और पता चला क्या होगा, बोले ज़्यादा धूप पड़ गई, ज़्यादा पानी चढ़ गया, कैसे भी करके बीज नष्ट होने पर उसमें से कोपल नहीं निकलता। तो पहला चीज़ है कि बीज मिले, कैसे मिलेगा, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण की कृपा से पहले हमें गुरु मिलते हैं और फिर उन गुरु की कृपा से कृष्ण का बीज मिलता है, भक्ति का बीज मिल गया। आरोपित करने के लिए मिट्टी चाहिए, विनम्रता, जब तक विनम्रता नहीं आएगी बीज लेने के बाद भी, हरे कृष्ण महामंत्र जानने के बाद भी, जय श्री कृष्ण जानने के बाद भी, कृष्ण भगवान जानने के बाद भी, व्यक्ति का बीज अभी, बीज तो खरीद लाया बाजार से, आरोपित नहीं हुआ, क्यों, मिट्टी नहीं है विनम्रता की। मिट्टी आ गई विनम्रता की, लेकिन अब क्या विनम्र तो बन गया, लेकिन उसने सोचा अब तो मैं भक्त बन गया, श्रवण कीर्तन छोड़ दिया, पानी देना छोड़ दोगे तो पेड़ सूख जाएगा। इसलिए कैसे करना है, निरंतर करह जल सिंचन, निरंतर कैसे, श्रवणम कीर्तन, निरंतर कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस भी कैसा कॉन्टिन्यूस, एक ही मोड में, एक होता है ऐसा कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन मूवमेंट और एक कॉन्टिन्यूस होता है ऐसा कॉन्टिन्यूस। जैसे अगर मैंने बोला है मैं एक घंटा रोज पढ़ूंगा, एक घंटा रोज सुनूंगा, तो एक घंटा वो दो घंटा और दो घंटा जब, ये चार घंटे येन केन प्रकारेण निकालने पड़ेंगे, वो नहीं निकल पा रहे तो चलो ठीक है, हो सकता है एक दिन थकान है, एक दिन हमारी यात्रा है प्रॉब्लम, दूसरे दिन यात्रा है, तीसरे दिन तो मैं उन दो घंटे जो पहले के रह गए, एक दिन का एक, एक दूसरे दिन का दो, उसको मिला के आज मैं चार घंटे पढ़ सकूं। तो अपने दिन को, अपने हफ्ते को, अपने महीने को इस प्रकार हमें बनाना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन मिस हुआ, फिर दूसरे दिन मिस हुआ, फिर तीसरे दिन मैंने एक श्लोक पढ़ के रख दिया, फिर तीसरे दिन मैंने पांच पन्ने पढ़ लिए, फिर तीन दिन तक कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये जो ऑसिलेशन मूवमेंट है ये नहीं कहा भगवान ने, कहा कहा सस्टेनेबल कॉन्टिन्यूस, स्पॉन्टेनियस कॉन्टिन्यूस, ऐसे ये वाला कॉन्टिन्यूस है। अगर गैप आ भी रहा है तो फिर आगे आने पर ये पुराने गैप को कवर करना है। ये श्रवण कीर्तन कोई व्यक्ति करता है तो झील जो बीज है वो आरोपित हुआ है वो बढ़ने लगता है। जैसे ही बढ़ेगा साथ में क्या उगेगी, खलपतवार आएगी, वीड्स आएंगी। और वीड्स क्या करेंगे, जितना जल सिंचन करोगे वो वीड्स ग्रो करेंगी और पेड़ छोटा सा पौधा रहेगा इधर वाले। तो क्या करना है, उसको बीच बीच में प्लग करके निकाल देना है वीड्स को। तो वीड्स क्या है, वीड्स है हमारी इच्छाएं अभिलाषाएं। धाम यात्रा में आए, श्रवण कीर्तन कम हुआ तो मन में शॉपिंग की बातें हैं, उसने ऐसा कहा था उसकी बातें हैं, और भी जनरल पॉलिटिक्स की बातें हैं, ये ग्रो करने लग जाएंगी मन में। जितना हम ये श्रवण कीर्तन करेंगे भी तो अभिलाषाएं पूर्ण करने में वो चला जाएगा, उसका जल उतना असर नहीं करेगा। क्यों, हमने इनको निकालना नहीं सीखा। जैसे अभिलाषा आए उसको निकाल के फेंक दो, ये इसलिए थोड़ी आया हूँ मैं धाम में, इसलिए थोड़ी आया हूँ मैं धाम में, इसलिए थोड़ी आया हूँ मैं धाम में, तो वो फिर श्रवण कीर्तन बीच पे काम करेगा। वरना ये श्रवण कीर्तन एक सेंस एंजॉयमेंट बन जाएगा कि ठीक है, जैसे हम फिल्मी गाने सुनते थे, प्रभु जी के कथा सुनने में बड़ा रस है, थोड़ा रस लिया, अब रस ना पियेंगे, बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मजे करेंगे, बीच पे जाएंगे, ये करेंगे। जैसे अभी बीच हरिनाम संकीर्तन हुआ, कितने लोगों ने हरिनाम संकीर्तन को हरिनाम संकीर्तन के भाव से किया, कोई कीर्तन में रिपीट नहीं कर रहा था, कोई डांस नहीं कर रहा था, कोई भुट्टा खा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई पानी में नहा रहा है, कोई डूब रहा है। प्रवृत्ति किस लिए आए थे, तो ये खलपतवार को जो श्रवण कीर्तन आपने किया दो दिन वो भी नष्ट किया, उसी में चला गया अभिलाषा पूर्ति के, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, धाम गए लौट के आए वैसे के वैसे ही है। तो ये निकालने पड़ेंगे बीट्स में, समुद्र में नहीं आया हूँ इसलिए, मैं नहीं आया हूँ इसलिए, मैं नहीं आया हूँ इसलिए, सब निकाल देंगे तब मैं आया हूँ जिसलिए, उस पर वो श्रवण कीर्तन असर करेगा, फिर वो बीज बड़ा होगा। जब वो बीज बड़ा होने लगेगा, फूल बड़ा पौधा निकलेगा, तो पहली चीज़ क्या निकलेगी कि जो गाय आदि है ना वो सोचेंगी हरी हरी घास, हरा हरा पौधा खाऊंगी, इसमें फल निकलेंगे, रसीला पौधा है। ऐसे जैसी भक्ति बढ़ने लगती है, जिसमें बढ़ती है, बाकी लोग क्या करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, बड़ा भारी साधु बनता है अपने को, ये बन गए साधु, ऐसे करके बोलेंगे, क्योंकि अभी पेड़ दरख्त नहीं बना है, पौधा है, वो नाजुक है। तो कोमल कोमल भक्ति को लोग धक्का मारेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब कोमल भक्ति को धक्का मारें तो क्या करना है, फेंसिंग बनानी है चारों तरफ। फेंसिंग का मतलब है बाड़ लगाना, कि कोई गाय जानवर आदि ना घुसे। तो कहते हैं अगर फेंस लगा दिया तो नेवर गो ऑफ द फेंस एंड नेवर डू ऑफेंस, कभी भी ऑफ द फेंस नहीं जाना, बाड़े के बाहर नहीं जाना है। बाड़े के बाहर जैसे पौधे का पत्ता गया खा लेगा कोई भी, तो फेंस से बाहर मतलब ऑफेंस नहीं करना है। वैष्णवों के प्रति किसी ने क्रिटिसिज्म किया भी तो उसको विनम्रता से कहना है कि कोई बात नहीं, मेरे भले के लिए कर रहे होंगे, ऐसे बोल, अच्छा वैसे बोल रहे थे मेरे बारे में, चलो अच्छा है, वो मेरे जान पाए मेरे अवगुण कितने हैं। ऐसे रामानुजाचार्य एक बार श्रीरंगम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया, पीछे 300 सन्यासी शिष्य, आगे रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य के समकालीन श्री संप्रदाय के आचार्य, रामानुजाचार्य जा रहे हैं तो उनको रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले दर्शन करने जाना है। बोले महाराज अभी रुक जाइए, ऑल्टर की सफाई हो रही है। बोले क्यों, बोले एक कुत्ता अंदर चला गया था तो ऑल्टर की सफाई हो रही है, तो आप थोड़ी देर बाद जाइएगा। तो बोले कि अगर कोई अपवित्र व्यक्ति चला जाए तो क्या ऑल्टर धोया जाता है, तो पुजारी बोला जी महाराज आप ही लोगों का लिखे हुए सिद्धांत है। बोले फिर जब मैं रोज ऑल्टर में जाता हूँ तो फिर आप लोग उसको धोते क्यों नहीं। तो सारे पुजारी बोले अरे आप कैसी बात कर रहे हैं। बोले अगर आप मुझसे और कुत्ते में भेद करते हो तो फिर इस महीने में आप जो है ना अभी समझ ही नहीं पाए भक्ति क्या है, हम सभी क्या है, कुकुर के समान है, कुत्ते के समान है। ये स्थिति में कोई व्यक्ति सोच सकता है तो वो आचार्य मतलब आचरण ला सकता है भक्ति का। वरना भक्ति भी एक, पहले मैनेजमेंट बुक्स पढ़ते थे, साइंस बुक्स पढ़ते थे, फिर नॉवल्स पढ़ने लगे, फिर आयुर्वेदिक बुक्स पढ़ने लगे, फिर अमर उजाला पढ़ने लगे, रीडर डाइजेस्ट पढ़ने लगे, अभी भागवत पढ़ते हैं, नो डिफरेंस। इसकी कथाएं बड़ी रोचक हैं तो हम कथाएं पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड इट्स ए स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, बट इट इज़ नॉट इफेक्टिंग आवर कॉन्शियसनेस। रीज़न क्या है, श्रवण कीर्तन का ऑफेंसेस बहुत है, अपराध पूर्ण जप, अपराध पूर्ण कथा श्रवण, अपराध करना, और सभी वैष्णवों को बड़ा ही साधारण बोलते हैं अतिर अवज्ञा, हाँ अति परिचय अवज्ञा, जितना परिचय होगा किसी व्यक्ति के साथ में उतनी अवज्ञा होती है। कॉमन मान लेते हैं ना, हंसी मजाक किया प्रभु जी के साथ तो प्रभु जी तो कॉमन हो गए। तो चलिए पैर पकड़ लिया, चप्पल उठा ली, खाना उठा लिया, झूठा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अति परिचित अवज्ञा, अति परिचित अवज्ञा का उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं कि चंदन की जो लकड़ी है वो कैसी होती है, बहुत महत्वपूर्ण है चंदन की लकड़ी। उसको घिस करके कहाँ लगाते हैं, भगवान को, और फिर अपने मस्तक पे धरते हैं। भगवान को जो चंदन की लकड़ी लगती है उसको पाने के लिए कितने कितने लोग जाते हैं दूर चंदन लेने, और वहां रहने वाली जो भीलनी होती है ना चंदन के पेड़ों के पास, वो भीलनी क्या करती है, लकड़ी काट के खाना बनाती है उससे। भाई भील है, मोस्ट कॉमनली अवेलेबल वुड इज सैंडलवुड। सो जो रहेगा बैंगलोर में भील, वो उस जंगल से क्या करेगा, चंदन से तो खाना बनाएगा। तो सूखी लकड़ी मिलती है उससे खाना बनाता है। तो सोचिए ये होती है अति परिचित अवज्ञा, बहुत कॉमनली जानने पे हम उसकी अवज्ञा और उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है लाइफ से। इसलिए वैष्णवा से डिस्टेंस बना के रखना इज ऑलवेज गुड। डिस्टेंस कैसे, जैसे कि एक फायर है, एक अग्नि लगाई है आपने और अग्नि का ताप, सर्दी लग रही है तो ताप कैसे लेते हैं, अग्नि में हाथ डाल के लेते हैं तब वार्म लगता है, अगर आगे डाल देंगे तो, और बहुत दूर चले जाएंगे तो तब ताप नहीं लगेगा। सो भक्ति को ताप चाहिए, सनलाइट, जैसे पौधे को सनलाइट, पूरा धूप में छोड़ दो तो जल जाएगा, हटा लो तो मर जाएगा। तो उसको थोड़ा धूप थोड़ी छाव, इसलिए जाली लगाई जाती है जिसमें ड्रिप ड्रिप करके उसकी जाली की जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनसे धूप प्रवेश करे, है ना। तो ये अगर कर सकते हैं हम कि थोड़ा थोड़ा हम संग रहें, थोड़ा थोड़ा दूर हटके जो इंस्ट्रक्शन दिए उन्हें फॉलो करें। अति परिचित अवज्ञा व्यक्ति को ऑफेंस कराती है। हम उन्हीं भक्तों के प्रति ऑफेंस करते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको जानते नहीं करते नहीं। क्यों, परिचय हुआ तो अति परिचित अवज्ञा हुई, अगर जानेंगे नहीं तो ऑफेंस कहाँ हुआ। तो इसीलिए अधिक वैष्णवों को नहीं जानना चाहिए कि प्रभु जी आपका ये कैसा है, वो कैसा था, ऐसे कैसा था। हमें उनके भक्ति में जीवन को अधिक चर्चा करनी चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज के पास कोई जाता है, मतलब महाराज आपकी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं, तो महाराज कहते हैं कि क्यों बताइए ना, आपकी वाइफ का क्या नाम था, आप घर जीवन में थे तो माता जी कैसा व्यवहार करती थी, आपको कोई कष्ट होता था। महाराज कहते हैं डोंट डिस्कस। अभी आप डिस्कस करोगे फिर बाहर जाके मजाक उड़ाओगे, फिर क्या करोगे, गुरु के प्रति अपराध, क्योंकि आप उसकी पास डिस्कस कर रहे हो। आज वेद व्यास जी का, वाल्मीकि का पास डिस्कस करो कि रत्ना का डाकू थे, हंसी उड़ाओ तो वाल्मीकि का अपराध होगा। तो हम ये सारी चीजें बहुत गहरी हैं, नहीं साधारण नहीं कि भक्ति सीख गए और गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया तो हम सब भक्त बन गए, है ना। तो बहुत जरूरी है कि श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि होनी चाहिए। इसलिए धाम में जाएं, कहीं पे भी जाएं, जैसे अभी हम लोग धाम में गए, हम जो कि हम इतना एक छोटा ग्रुप बना के भी चल रहे हैं, फिर भी क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं सब लोग, कोई अपने फैमिली में लग जाता है, कोई अपनी रेस्ट में लग जाता है, कोई अपने कपड़ों में लग जाता है धोने में। लेकिन आए किस लिए थे, पुण्यम श्रवणम कीर्तनम, और वो ही सबसे कम अगर हुआ है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, है ना। कितने लोग हैं जब कथा चल रही होती थी, तो उस समय भी प्रसाद पाने की लाइन में लग जाते थे, जस्ट इमेजिन। उनको गाइड करने वाले कोई नहीं है, अति परिचित अवज्ञा, जान ज्यादा अधिक, अरे हम सब पता है इस कौन के बारे में, हमें सब पता है मंदिर के बारे में क्या चल रहा है, अरे जो चल रहा है सो चलने दो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना। लेकिन हमारी उंगली हमेशा दूसरे पे उड़ी रहती है, और ये तीन जो मुड़ी रहती है इनकी तरफ ध्यान नहीं रहता, इसीलिए डिप्रेशन है। जिस दिन अपने पे काम करने लगेंगे तो उस दिन टेंशन चली जाती है। जब हम स्कूल कॉलेज में था मैं, तो एक पुस्तक पढ़ता था, तो उस पुस्तक में एक रेसर के बारे में आया था, एथलीट्स के बारे में। उससे पूछा कि तुम वर्ल्ड चैंपियन कैसे हो हर साल, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है, तो उसने बोला कि जब मैं नया नया कॉम्पिटिशन में आया ओलंपिक्स, तो मेरा टारगेट था कि जो जीतने वाला व्यक्ति है उसने कितने मिनट में सर्कल कंप्लीट किया रेस। तो पता चला कि उसने मान लीजिए एक मिनट में सर्कल कंप्लीट किया, तो बोला मेरा टारगेट था मुझे 1 मिनट में कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट वो व्यक्ति नहीं था, मेरा टारगेट समय था। फिर मैंने जब 1 मिनट से कम में 99 सेकंड्स में कवर कर लिया, 59 सेकंड्स में कवर कर लिया तो क्या हुआ, तो मेरा टारगेट तो फुल हो गया। अभी मेरे को तो फिर और कुछ करना था, तो अगला टारगेट क्या बनाऊंगा, मैं तो नंबर वन हूँ, तो फिर मैंने 59 को टारगेट बनाया कि हमें 59 से कम करना है। और इसी तरह से मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ जिसने 43 सेकंड्स में कवर किया है सर्कल को 60 सेकंड्स की बजाय। तो मैं हर एक सेकंड पर काम कर रहा हूँ, ये टारगेट। तो वो इसमें नहीं काम कर रहा है कि और कितने ओलंपिक, अब मैं तो आ गया हूँ, अब मैं तो बेस्ट हूँ, फिर तुरंत वो एक मिनट से नीचे चला जाएगा। इसलिए भक्ति का कार्य है अपने पे काम करना। हाँ, हमारी साइंस का नाम है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ अदर्स रियलाइजेशन नहीं है। प्रभु जी उनके बारे में क्या सोचना है आपका, उनके बारे में क्या सोचना है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वॉट लेट एवरीबडी डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, वी विल डू वॉट इज सेट टू बी डू इन दी स्क्रिप्चर, शास्त्र में हमारे लिए क्या हमें कहा गया। इसलिए हम आज आए हैं यहाँ पर इस पुण्य क्षेत्र में जिसे गुरु वयूर कहते हैं। तो ये गुरु वयूर जो भगवान है, ये भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या पर प्रकट हुए थे। और इस जो अभी कल्प चल रहा है ब्रह्मा जी का दिन, हर एक दिन को कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के, जिस कल्प में 12 घंटे में 14 मनु की रचना करते हैं और एक मनु 71 चतुर्युग में जाता है, और हर चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। इतने बड़ा 12 घंटे जो है, वो इतना ही 12 घंटे की रात्रि, जब एक दिन पूरा होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक कल्प। तो इस ये जो कल्प है इसका नाम है वराह कल्प, श्वेत वराह कल्प, सफेद रंग के वराह भगवान का कल्प। इससे पहले वाला जो कल्प था उसका नाम था, मतलब जो दिन था उसे पद्म कल्प कहते हैं, पद्म कल्प, पद्म मतलब कमल, लोटस। तो पद्म कल्प जो था, पद्म कल्प के समय में ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप मुझे, ये कल्प समाप्त हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तपस्या करूँ, उपासना करूँ और मुक्त होकर, इसे माता जी प्रश्न पूछ रही थी उस दिन सुदक्षा माता जी, कि ब्रह्मा जी की मुक्ति होती है कि नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो पद्म कल्प में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है और बोला है क्या करिए, मेरी मुक्ति दीजिए। इसमें भी अगर हम खोलें अपना भगवद गीता के अंदर तो 8 श्लोक नंबर 8.17 के परपट में लास्ट लाइन में, 8.17 के परपट के लास्ट लाइन में क्या लिख रहे हैं ब्रह्मा जी। तो 8.17 ब्रह्मा जी के बारे में बता रहा है। तो इसकी आखिरी लाइनें पढ़ी, 3-4, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ी आखिरी।
इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्म लोक भेजा जाता है जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं।
तो अगर कृष्ण की सेवा में लगे हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को भी मुक्ति प्रदान करें। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि मुक्ति कैसे ब्रह्मा जी की, क्या वो मरे हैं ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी मरे नहीं हैं, ये वाले, ये पद्म कल्प वाले ब्रह्मा की चर्चा हुई है इसमें। तो पद्म कल्प वाले ब्रह्मा को कृष्ण सेवा करी, उन्होंने 100 कल्प तक, मतलब 100 कल्प नहीं, एक दिन में एक कल्प होता है, तो 365 कल्प तो एक साल में हुए, 100 साल, तो 365 × 100 36,500 कल्प तक ब्रह्मा जी ने सेवा की कृष्ण की। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, जब ऐसी प्रार्थना की तब पद्म कल्प के अंत में उनको भगवान ने विष्णु मूर्ति प्रदान करी कि तुम इसकी उपासना करो, है ना। तब उन्होंने उन विष्णु मूर्ति की चतुर्भुज रूप भगवान की उपासना करी। बाद में वही मूर्ति ब्रह्मा जी की जब प्रश्नी गर्भा और सुतपा नाम के दो भक्त हुए भगवान के, प्रश्नी और सुतपा, सतयुग के अंदर उन्होंने कई 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी, वो भी सूखे पत्ते खा के भगवान का भजन किया। हमें भजन के करने में कोकोनट पानी चाहिए और मलाई भी चाहिए, है कि नहीं? मलाई के बिना हमारे को भजन में मजा नहीं आता। हमको क्या चाहिए, स्वीट्स चाहिए, प्रसादम, है ना, बढ़िया टेस्टी प्रसाद कहाँ मिलेगा। लेकिन सुतपा और प्रश्नी गर्भा, प्रश्नी ने क्या किया, 12,000 दिव्य वर्षों तक, डिवाइन ईयर्स तक सूखे पत्ते खा के भगवान का भजन किया। क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब उन्होंने इस प्रकार का भजन किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप जाकर सुतपा और प्रश्नी को क्या प्रदान करो, मेरा ये विष्णु रूप प्रदान करो। क्यों, मेरे नाम में और मेरे विग्रह में कोई भेद नहीं है, मुझ में और मेरे विग्रह में। भगवान राम जब अयोध्या से वनवास जा रहे थे तो सभी वनवासी पीछे पीछे गए, बोले प्रभु राम आप चले जाएंगे तो हम किसको दर्शन करेंगे रोज सुबह, क्योंकि हमारी तो नियम क्रिया है आप सुबह उठ के सिंहासन पर बैठते और हम सब आपका दर्शन आरती करने आते हैं, देखने आते हैं आपको कितने सुंदर रूप में बैठे सिंहासन पे आके आप बैठ जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि अब मैं वनवास जा रहा हूँ, चिंता मत करो। भगवान ने तुरंत एक विग्रह बनाया और विग्रह बना के वृंदा साकेत वासी अयोध्या वासियों को दिया और कहा मुझ में और मेरे विग्रह में कोई भेद नहीं, तो अगर तुम इस विग्रह को मेरे ही रूप में पूजोगे तो तुम्हें वही फल प्राप्त होगा जो मेरे तुम्हें दर्शन से प्राप्त होता है। तो यहाँ रामचंद्र जी स्थापित करते हैं कि भगवान की मूर्ति कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। तो इस तरह से विष्णु मूर्ति प्रदान की गई सुतपा और प्रश्नि को। सुतपा और प्रश्नि से ब्रह्मा जी की सेवा थी कि अगले कल्प में, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया है, सुतपा और प्रश्नि के घर में प्रश्नि गर्भा बन के भगवान सतयुग में आते हैं। कैसे आते हैं, निज अंशेना अपने अंश स्वरूप में समस्त साज सामान सहित आते हैं। फिर भगवान ने उनकी सेवा, प्रसन्न हुए, उनके घर में बच्चे बन के रहे। फिर भगवान ने उनको वादा किया था कि मैं 3 बार आऊंगा तुम्हारे। फिर भगवान अदिति और कश्यप के घर में वामन बन के आए। तो भगवान आए तो वो किसी की तो पूजा करते होंगे, तभी तो भगवान आए, तो कौन सी पूजा करते थे, वही पद्म कल्प के ब्रह्मा जी के वो तो भगवान विष्णु की मूर्ति। तो पहले ब्रह्मा जी तक आई, ब्रह्मा जी से फिर किसके पास आई, प्रश्नी गर्भा सुतपा और प्रश्नी के पास आई। और सुतपा प्रश्नी प्रश्नी गर्भा का जब अंत हुआ उस काल का, तब सतयुग से त्रेता युग में अदिति और कश्यप के पास ही आई। और उसके बाद में द्वापर युग में देवकी और वासुदेव ने भी इन्हीं का भजन किया जो ये मूर्ति है। और फिर ये किसके पास आई, ये देवकी और वासुदेव के घर कृष्ण स्वयं आए। लेकिन स्वयं निज अंश रूपेण नहीं आ रहे हैं, भगवान किस में आ रहे हैं, पूर्ण अंश रूपेण। इसलिए कहा गया कि जो कृष्ण है, एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। हर युग युग में कौन आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, लेकिन कभी आ रहे हैं एते च अंश कला पुंसा, कभी अंश लेके कभी कला लेके, कुछ इधर ले लिया कुछ इधर ले लिया, मिस करके दे दिया डिश। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्ण अंशेन आ रहे हैं, ये डिफरेंस है विष्णु मूर्ति और कृष्ण। तो इस प्रकार से ऐसी लीला हुई। उसके बाद में जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं देवकी वासुदेव को मथुरा से लेकर के चले गए द्वारका, तो देवकी वासुदेव ने भी अपने घर में किसकी पूजा करी, इन्हीं विष्णु मूर्ति की, क्योंकि कृष्ण को तो वो अपना बेटा मानते हैं, वो पूजा भगवान की क्या करें। तो द्वारका में देवकी वासुदेव करते हैं और देवकी वासुदेव कृष्ण को भी बिठाते हैं और कृष्ण भी स्वयं अपनी विष्णु मूर्ति की। तो वो विष्णु मूर्ति जब भगवान के यदुवंशियों में सब में युद्ध हो गया आपस में, सभी एक दूसरे को काट काट के जा रहे थे वापस लीला धाम में, तो भगवान ने अर्जुन और उद्धव की सेवा लगाई कि उद्धव जी आप भागवत कथा सुनाइए 16,108 जो मेरी रानियां हैं, और अर्जुन तुम्हारी सेवा है, तुम लेकर के सबको जाओ कहाँ, वृंदावन व्रज मंडल में। परीक्षित की सेवा लगाई कि तुम चारों तरफ से घेराबंदी करो, क्योंकि भागवत कथा जब चालू होगी तो कलयुग का प्रवेश होगा, है ना, और मैं रहूंगा नहीं तो कलयुग को कौन काटेगा। तो लेकर के अर्जुन ने जितनी भी मूर्ति आदि थी, जैसे उड़ीपी कृष्ण की जो मूर्ति थी जो रुक्मणी के द्वारा पूजित थी, उसको डाल दिया था गोपी चंदन के तालाब में, गोपी तालाब। ऐसे ही जो देवकी वासुदेव के द्वारा पूजित विग्रह था, लड्डू गोपाल और विष्णु मूर्ति, इन सभी को क्या किया गया, वो भी पानी में विसर्जन कर दिया गया। तो सभी द्वारका कहाँ चलेगी, पानी के नीचे, अंडर वाटर। अभी भी बहुत सारा डिस्कवरी चैनल पे आता है अंडर वाटर द्वारका। तो बाद में कुछ वर्षों बाद जब ब्रह्मा जी को कहा कि वो मूर्ति कहाँ चली गई है, तो फिर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर कि वो मूर्ति बहुत प्राचीन है, अर्जुन ने पता नहीं उसे कहाँ डाल दिया है, अब मैं सेवा लगाता हूँ देवताओं के गुरु बृहस्पति की और देवताओं का एक देव जिसका नाम वायुदेव, जो कि माधवाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। कहा माधवाचार्य, वायुदेव और गुरु बृहस्पति, तुम दोनों की सेवा है कि तुम्हें वो मूर्ति ढूंढनी है जो पद्म कल्प से चली आ रही है, उसको ले जाकर के कहाँ रखना है, ऐसे स्थान पर जो रमणीय स्थान हो, भजनीय स्थान हो, स्मरणीय स्थान हो, जो कृष्ण का सुत स्मरण कराए, पुण्यम श्रवण कीर्तन कराने में रुचि उत्पन्न करे, ऐसे स्थान पर ले जाओ। तो अब वो ढूंढते 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 आए तो उनको यहाँ पर रमणीय स्थान लगा, क्योंकि यहाँ पर परशुराम बैठ करके तपस्या कर रहे थे, जो ये क्षेत्र है केरला का, जिसे त्रिशूर या फिर हम गुरुवायूर अभी कह रहे हैं, लेकिन पहले ये त्रिशूर क्षेत्र ही है। तो इस केरला के इस वन के अंदर वो आए और आकर के परशुराम जी से पूछा, परशुराम जी ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ पद्म कल्प से चली आ रही इस मूर्ति को 3 युगों में भगवान कृष्ण के प्राकट्य कराने के पीछे का कारण है, उसको स्थापित करना है, कहाँ करें? तो बोले परशुराम, बोलते मेरे प्रभु भगवान शिव पार्वती यहाँ पासी में तपस्या करते हैं, उस स्थान का नाम है रुद्र तीर्थम। तो रुद्र तीर्थ नाम का एक सरोवर है जहाँ पर कमल अति निकले हुए हैं, उन कमलों के पास चलिए, आप भी देखिए कितना सुंदर वातावरण है। तो गुरुदेव बृहस्पति और वायुदेव दोनों मिलके आए और देखा कि हाँ बहुत सुंदर स्थान है, शिव जी की उपासना करी, शिव और पार्वती के आदेश अनुसार उनका क्या किया गया, स्थापना की गई। स्थापना करने पर नाम क्या दिया जाए, तो विश्वकर्मा जी को बुला करके मंदिर का निर्माण किया गया, क्योंकि गणेश जो है वो विघ्नहर्ता है, इसलिए हर द्वार पर हाथी के चिन्ह और साक्षात हाथी विराजमान किए गए, और इस स्थान का नाम जो रुद्र तीर्थम था वो कुंड बन गया, जिस कुंड में सबसे पहले रखे गए उनका क्या अभिषेक किया गया, जिस जल से बाद में स्थापना की गई गुरु और वायुदेव के द्वारा, इसलिए नाम पड़ गया गुरु वायुर, है ना, और अपन मतलब यहाँ भगवान, अप्पा मतलब गुरु वायुर, अपन मतलब जो बृहस्पति जी के द्वारा और वायुदेव के द्वारा स्थापित विग्रह पर है। किस रूप में? चतुर्भुज रूप विष्णु, पर भाव कौन सा है? देवकी वासुदेव का बाल स्वरूप। तो देखा जाए तो वो लड्डू गोपाल ही है, लेकिन उन्होंने अपना विष्णु रूप दिखाया है, वो कौन सा वाला? जो देवकी वासुदेव को जलम के समय जेल में दिखाया था, चतुर्भुज रूप। तो वो चतुर्भुज रूप बाल स्वरूप है। तो लोग बोलते हैं कि वो बाल स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं है? तो बोलते हैं भगवान को ये स्थान इतना रमणीय लगता है, वो पूरे गुरुवायूर मंदिर के अंदर घूमते रहते हैं, एक जगह रहते नहीं, कहीं मक्खन खाते हैं, कहीं भक्तों से मिलते हैं, कहीं पदचिन्ह बनाते हैं, कहीं लीला करते हैं, कभी मटकी फोड़ते हैं। तो ये जो भगवान है उनको एक जगह बांधना मुश्किल है। यशोदा मैया ने बांध दिया उखल से, तो उखल लेके चल दिए, तो ये तो रुकने वाले नहीं है बाल स्वरूप। इसलिए विष्णु क्या है, ऑफिशियल फॉर्म है भगवान का, वो स्टेबल फॉर्म है। तो इसलिए विष्णु की मूर्ति को स्टेबल करके पूजा अर्चना होती है, जो देवकी वासुदेव ने की, परंतु भाव कौन सा था? कृष्ण का। इसलिए यहाँ भाव है गोपाल का, इसलिए राधा रानी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, लेकिन कौन है? खाली विष्णु मूर्ति है। तो ऐसा जो गुरुवायूर मंदिर है इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति है, क्योंकि पद्म कल्प, एक कल्प परिवर्तित हो चुका है इस मूर्ति की। सभी देवी देवता ब्रह्मा शिवजी परशुराम अर्जुन देवकी वसुदेव प्रश्निगर्भा सुत्पा अदिति कश्यप सबने इनका पूजा किया है। तो कहते हैं जो ये गुरुवायूर स्थान है, ये द्वारका जो गुजरात का है, पुरी का जो जगन्नाथ है, और दक्षिण भारत का रामेश्वरम है, बद्रीनाथ तीर्थ है ऊपर का उत्तर भारत का, उन सब के समान ये पांचवा स्थान मोक्ष मतलब तीर्थ कहलाता है, जो इन 5-4 के समान ही मूल्यवान है। तो ऐसा जो ये गुरुवायूर स्थान है, यहाँ पर जब परीक्षित महाराज का जो बेटा था जन्मेजय, परीक्षित को जब श्राप मिला कि तक्षक तुम्हें काट लेगा 7 दिन में, लेकिन तक्षक ने वो कहा रखा था अमृत, और तक्षक आया और तक्षक ने तुरंत ही भारी अग्नि निकाल करके परीक्षित महाराज को जला दिया पूरा, या हम गंगा के तट पर, और वो स्थान था कौन सा? शुकताल। शुकताल में जला दिया, लेकिन शरीर जल गया उनका, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह कहाँ चला गया? भगवान के धाम गरुण पे आसीन आरण होकर के। तो ऐसा जो भगवान का विग्रह था, उनके बेटे परीक्षित के जो बेटे थे जन्मेजय, उनको बहुत क्रोध आया कि ऐसा कैसे हो गया कि सारे सांप के कारण मेरा जो है ना पिता को मार दिया गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, सर्प वंश को समाप्त कर दूंगा। अलग अलग स्थानों पे यज्ञ कुंड बनाए गए, है ना। और यज्ञ कुंड बनाने का यज्ञ आहुति दी गई कि सांप ऐसे मंत्र पढ़े सांप खुद आकर के स्वाहा स्वाहा करके गिर जाते थे। पूरे ब्रह्मांड के कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों सांपों को हवन यज्ञ में कुंड में जलाया। तक्षक को जलाने का प्रयास था पर तक्षक ने अमृत खाया था वो जला नहीं, और तक्षक ने श्राप दिया जन्मेजय को कि तुमने हमारे शरीर को जलाया है, तेरा शरीर जल जाए। और जन्मेजय को कोढ़ हो गया, तो कोढ़ हो गया तो लेप्रसी हो गई, लेप्रसी हो गई, कोढ़ हो गया। तो जन्मेजय ने फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि मैं तो जो है ना अपने पिता का सम्मान कर रहा था, इस धर्म को बचा रहा था जो कि तक्षक के द्वारा नष्ट किया गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो तो एक लीला थी, अगर वो नहीं होती तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भागवत प्रकट नहीं होती, तुमने ये क्या किया। अब बोले अभी क्या हो सकता है, बोले आप क्षमा याचना करो, तक्षक तो चला गया। बोले काम करो तुम चले जाओ गुरुवायूर क्षेत्र में, और वहाँ जाकर के गुरुवायूर अपन भगवान जो है उनकी प्रार्थना करो, उनकी प्रार्थना से क्या होगा तुम्हारा जो एक शरीर का कोड है ये दूर हो जाएगा। तो आज भी कई सारे जो शारीरिक रोगी लोग हैं वो यहाँ आते हैं, कुंडों का जल आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, देखा गया है बड़ा ही परिवर्तन होता है लोगों के जीवन में। तो जो भी चीज़ें हैं हमें उससे चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, हमें जो है ना शास्त्र को नमस्कार करना है, इन कथाओं को नमस्कार करना है, क्योंकि हमारा मूल शरीर परिवर्तन करना नहीं है, हमारा मूल गंतव्य है आत्मा परिवर्तित हो, सच्चिदानंद आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भगवान की सेवाओं में लगे। ठीक है, तो ये जो गुरुवायु क्षेत्र है इसके बारे में आपको बताया, तो अब जाएंगे तो इसी भावना से जाएं यहाँ पर जो बताएंगे। हरे कृष्ण, श्री गुरुवायु भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई निताई गौर हरि प्रेमानंद।